कचुठाड़ी गाय रंगी तरे मचाई बिटरिया ठट्टा भाभी तो काजल लगाए रही कछ लड़कियां तो पीछे घुमो करके हंस रही और कछु ठाड़ी ठाड़ी गीत गाए रही गीत नहीं मानी और तुम्हें मालूम है आदत वालों कहूं आदत ना भूल पाते ना भूल पाते लिखा है कवि ने क्या लिखा
अरे चुगला से मन की बात करो तो चुगलू कब ना चूकेगो
और अंधे पे भैंसियों कुतवयो बूनो की क्या राह कूतेगो
रंग स्वभाव न बदले कथा भागवती रोज सुनइयो आक ढाक कब होइ न चंदन मलिया गिर के पास लगइयो
और भैया रामनीत
कुत्ता को कितनों समझाइयो लेकिन टांग उठाई के
दोस्तों ससपाल जब नहीं माना है और शादी की जो तिथि निश्चित थी उससे चार दिन पहले ही अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को साथ में लिया और बरात लेके रुकुम के सामने पहुंच गया और जैसे ही रुकुम ने देखा बड़ा खुश है कह रहा है हमें तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम हमारी बात को नहीं टालोगे। अरे कोई बात नहीं, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, अब हम और तुम बराबर होने के लिए जा रहे। बड़ी खुशामद की है और जब खुशामद की है इधर रुक्मिणी को जब ये मालूम हुआ है कि ससपाल अब तो बारात लेके भी आ गया तो आंगन में बैठ के रुक्मिणी सोचने लगी अब हम क्या करें श्याम सुंदर, मेरी तो समझ में नहीं आता है अब हम क्या करें। आंगन में बैठी बैठी रोने लगी है
ओ प्यारे श्याम सुंदर कहां तुमने देर लगा भैया के साले नहीं आई, श्याम नगर घेरी लो आई है। तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, अरे सतपाल अब बारात लेके आया है, क्या करें। ओ प्यारे श्याम सुंदर कहां अब तुमने फेर लगाई है, और भैया के साले ने श्याम मेरो नगर घेर लो आई है।
बैठी बैठी रुकमणी जब रोने लगी है, श्याम सुंदर के बारे में सोचने लगी, क्या करें क्या न करें। हे कन्हैया, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। रुकमणी आंगन में बैठी बैठी रो रही थी, और तब तक क्या हुआ है कि एक ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही वहां से निकले हैं, रुक्मिणी के पास में आए, और जब रुक्मिणी को रोता हुआ देखा तो एक बात कही, रुक्मिणी तुम रो रही हो, हमने तो ये सुना है कि तुम्हारी शादी है और ससपाल वरात लेके आया है, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम तो रो रही हो। रुक्मिणी कहने लगी है, ब्राह्मण देव तुम मुझे एक बात बताओ, मैं अपने भाई के साले की दुल्हन बनकर के कैसे चली जाऊं, मैं श्याम सुंदर के अलावा किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ में शादी नहीं।
और जैसे ही भगवान कन्हैया को नाम सुनो, सो ब्राह्मण बोले, रुक्मिणी तुम हमें एक बात बताओ।
क्या?
अरे श्याम सुंदर तो यहां कब आओ ना, और तूने कहां देखो।
रुक्मिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देव मैंने श्याम सुंदर को देखा है।
कहां देखा है?
मैंने देखा है।
अरे बोला ना कहां देखा है। तो रुक्मिणी बोली है, ब्राह्मण देव
मैंने सपने में श्याम को देखो है रे, सुनो पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है रे, सुनो पंडित जी
सपने में देखो। तो पंडित जी बोले, चुप रहो, कैसे मौका करेंगे, देख सपने में देखे, सपने को अपने होते हैं, काय के लिए मरी जाती है। अच्छा एक बात बता, तूने सपने में देखे या मतलब का चुकाई।
बोले कहा क्या कहा। तो रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण देव
अरे कही गए श्याम मोई चिट्ठिया पठाइयो, और चिट्ठिया भेज के हमें बुला भैया,
लेकिन कॉलेज में मेरा संदेश है रे, सुनो।
पंडित जी मैंने सपने में श्याम को देखो है रे सुनो पंडित जी।
जवाब दिया ब्राह्मण देव मैंने श्याम सुंदर को सपने में देखा है और उन्होंने हमसे ये कहा था अगर तुम हमारे पास में पत्र भेज दोगी तो हम तुम्हारे पास में आ जाएंगे।
तो ब्राह्मण बोले रुक्मणी तुमने पत्र भेजा?
हे ब्राह्मण देव मैं किसके हाथों से पत्र को भेज दी? ऐसा ना करा तुम ही मेरे पत्र को लिए जाओ।
मैं? ना जी ना बिल्कुल नहीं। अरे द्वारिका तो यहाँ से बड़ी दूर है और मेरे ऊपर तो बुढ़ापा है, हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, रास्ते में ही हमारे प्राण निकल जाएंगे, हम पत्र नहीं ले जाते।
बोली ब्राह्मण देव अगर तुम मेरे पत्र को लेके नहीं गए ना तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को दे दूंगी।
मतलब?
तो रुकमणी तुम मरो मत।
अरे मरो मत, पत्र लिखो, लिखो पत्र और हम तुम्हारे पत्र को लेके जाएंगे, पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, लिखो। ब्राह्मण देव को खड़ो करवे के बाद में रुक्मणी जो रहे महलों के अंदर जब पहुंची है और श्याम सुंदर के लिए वो पत्र लिखने लगी है, आंखों में आंसू हैं, सोच रही है क्या करें क्या न करें, हम क्या लिखें। रुक्मणी रुक्मणी रो रही है और श्याम सुंदर से उनके बारे में लिखने लगी, कह रही है
सीधि सिरी देवादि देव प्राणेश प्राणी धन प्रणी जीवन
लेके रुक्मिणी जब लिखती रही है सोच रही है श्याम सुंदर अरे हमारे पास में लिखने के लिए वो शब्द नहीं है जो हम क्या क्या लिखें, सोचने लगी है कह रही है, श्याम सुंदर तुम्हें नहीं मालूम है हमारी क्या दशा है।
अब तो दशा मेरी ऐसी कन्हैया शेर बीच जैसे फंसी हो गईया।
हे श्याम सुंदर अब तो मेरी वो दशा है जैसे शेर के बीच में गाय फंसी हो।
अब तो दशा मेरी
मेरे भैया रुक्मिणी ने जब पत्र लिखा है और पत्र लिखवे के बाद में और ब्राह्मण देव के सामने पहुंची जवाब दो, हे ब्राह्मण देव आप मेरे पत्र को लिए जाओ ना और श्याम सुंदर को अपने साथ में ही बुलाए के लियो। ब्राह्मण बोले रुक्मिणी मरे मत जाओ हम जाए रहे। अब ब्राह्मण जो रहे धीरे धीरे जैसे ही आगे को बढ़त भाई जाए रहे थे। अब उनके ऊपर तो बुढ़ापो है, बुढ़ापे में हाथ पैर काम ही ना कर रहे। हाँ लेकिन दोस्तों कितना भी सुख हो बुढ़ापे में दुख ही दुख रहता है, क्योंकि जब शरीर ही साथ छोड़ जाता है तो फिर और कैसे सुख मिल सकता है। ब्राह्मण देव जो रहे धीरे धीरे आगे को बढ़त भय जैसे ही चले और गात भय गुनगुनात भय आगे को जब बढ़े हैं कह रहे हैं,
मोए भी सम की बिटिया ने भेजो है रे सुनो सावरिया।
Thank you. ब्राह्मण देव जैसे ही आगे को बढ़त भाई जा रहे थे, लेकिन सुंदर देख एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन पई पे जमाया, अब ब्राह्मण ने आसन पई पे जमाया और सुंदर वृक्ष की छाया देखी और ब्राह्मण देव बाई के नीचे लेट के सोए गए। अब ब्राह्मण तो यहां सोए रहे हैं और उधर श्याम सुंदर ने सोची कि ब्राह्मण तो हमारा पत्र लेके आ रहे थे, वैसे उनके ऊपर बुढ़ापो है और अब वो तो सोए रहे द्वारिका में कैसे आप है। तो अपनी माया के द्वारा श्याम सुंदर ने ब्राह्मण को द्वारिका में उठवाओ है। जैसे ही द्वारिका में ब्राह्मण देव पहुंचे, सोए तो वन में रहे लेकिन आंखें जब खुली तो द्वारिका में बड़े सुंदर सुंदर महल बने हैं। दरवाजे दरवाजे पर कलश सुशोभित हैं, बंधनवार लगी हुई है, केला के खंभ हैं। और जब सुंदर द्वारिका देखी और धीरे धीरे ब्राह्मण देव जो रहे बलराम की सभा में पहुंचे, बलराम ने अन्य लोगों ने जैसे ही ब्राह्मण को आता हुआ देखा तो उठकर के प्रणाम किया, सुंदर से आसन पर बिठा लिया। तो बलराम कहने लगे, कहो ब्राह्मण देव कहां से आना हुआ, किससे मिलना है। तो ब्राह्मण बोले, भैया तुम हमें जब बताओ तुम लोगों में कन्हैया कौन से है। और श्याम सुंदर बिल्कुल दूर बैठे रहे। बलराम ने इशारों कर दो और जैसे ही ब्राह्मण देव ने श्याम सुंदर को देखो सही मन ही मन में सोचन लगे, हाय अब तो देखो ना तो ले जमालम पति जी ने कितो सुंदर हो, अब हमारी समझ में जाना आती के रुकमणी ने कहा देख लो वैसो कारो कर उठा सुधर चलो हमें का मतलब। ब्राह्मण देव जो रहे तुरंत ही उठ के श्याम सुंदर के सामने पहुंचे और कन्हैया ने जैसे ही देखो सोई एक बात कही, कहो ब्राह्मण देव कहां से आना हुआ। तो ब्राह्मण बोले कि ब्राह्मण बोला, हे दया निधे मैं कुंदनपुर से आया, रुकी मेरी चरण की चेरी है, रुकी मेरी चरण की चेरी है, संदेश आयुष का लाया हूं। जवाब दिया श्याम सुंदर, मैं कुंदनपुर से आया हूं, भीष्मक की लड़की रुक्मिणी ने हमें तुम्हारे पास में भेजा है, ये पत्र देख लीजिए। और जैसे ही कन्हैया ने वो पत्र खोल के देखो सो ये एक बात कही, ब्राह्मण देव इसमें तो ये लिखा है कि सस्पाल दूल्हा बन के आया, बरात लेके आया है। अरे रुक्मिणी से जाके कह दो कि वो सस्पाल के साथ में शादी कर ले। तो ब्राह्मण कहने लगे, श्याम सुंदर वो लड़की मर तो सकती है लेकिन सस्पाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती है। तो कन्हैया बोले, भला हम कैसे जा सकते हैं, अरे हमें तो बलराम भैया कहीं जाने भी नहीं देते, कहीं नहीं जाने देते और हम कैसे जाएंगे उस जगह पर। तो ब्राह्मण बोले, कन्हैया तुम चाहे कछु करो वो लड़की मर जाएगी लेकिन शादी नहीं करेगी। तो श्याम सुंदर बोले, देखो ब्राह्मण देव हम तुम्हें एक उपाय बता रहे। कौन सो, जवाब दो, जब तुम घर पे जाने के लिए तैयार हो तो सब लोग खड़े हो कि तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाएं। फिर तुम ऐसो करियो थोड़ी दूर चलियो बैठ जाइयो खांसर रही हो फिर ठाड़े हो जाइयो फिर थोड़ी दूर चलियो फिर खांसी हो बैठ जाइयो और हम तुम्हें जाओ से छोड़ने के लिए चले बाहर से ब्याह और गोनो सब करे लें भाव ऐसे थोड़ी देर तक तो बलराम की सभा में ब्राह्मण देव बैठे फिर बाकी बाद में जैसे ही चलवे के लिए तैयार भए तो दरवाजे तक सब लोग छोड़ने के लिए उन्हें चले। अब कन्हैयो जा रहे और ब्राह्मण देव जा रहे, अब ज्यादा ना दो चार ही कदम बढ़े आगे को सोई श्याम सुंदर ने ब्राह्मण की तरफ देखो, ब्राह्मण ने कन्हैया की तरफ देखो, सोई एकदम से श्याम ने इशारो कर दो और इशारो पाए के ब्राह्मण देव बाई जगह पर बैठ गए, सर को पकड़ी खांसता रहे बैठे रहे, उठ के फिर चले दो चार कदम और बढ़े पाए सोई कन्हैया ने फिर इशारो कर दो फिर बैठ गए। सोई बलराम बोले ब्राह्मण देव हमारी समझ में एक बात न आई, तुम थोड़ी दूर ना चल पाता हो खांसता हो बैठ जाता हो, तुम्हें कौन सी बीमारी है? ब्राह्मण ना बोले ता से पहले श्याम सुंदर बोले भैया देखो ना इनके ऊपर बुढ़ापो है, बुढ़ापो और शरीर में इतनी शक्ति नहीं है ताकत नहीं है कि ये पैदल चल पाए, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम इन्हें थोड़ी दूर तक छोड़ दे। बलराम कहने लगे श्याम जाओ और अति शीघ्र इन्हें छोड़ने के बाद हमारे पास में लौटाना, कहीं रास्ते में रुकना मत। कन्हैया बोले हम काहे कर रुके, बिल्कुल ना रुके, अब ऐसे गए अब तुरंत ही लौट गए रे। ब्राह्मण को रथ पे बिठाओ और श्याम सुंदर वहां से आगे को बढ़े, रथ इतनी तेजी से लेके गए और कुंदनपुर के बाहर ही रथ को रोक लिया। श्याम बोले देखो ब्राह्मण देव रुक्मिणी से जाए के कह दे कि वो सस्पाल के साथ में शादी कर ले, हम तो कोई सेना है ना लेके आए और दुल्हन बन के चली जाए। बहे बात ब्राह्मण ने कही देखो श्याम सुंदर वो मर तो सकती है लेकिन सस्पाल की दुल्हन बन करके नहीं जा सकती है, तो क्या करें? ब्राह्मण बोले श्याम सुंदर अगर रुक्मिणी तुम्हें कहूं अकेले में मिल जाए तो? कन्हैया बोले अगर अकेले में मिल गए तो कोई चिंता ना है, तब तो हम ले जाए लेकिन अकेले में मिले ही कहां। तो ब्राह्मण बोले ऐसा करो तुम जो मंदिर है ना जो मंदिर दिखाई ना पड़ता है, तुम ऐसा करो तुम जब मंदिर पर ही खड़े हो जाओ।
क्या?
हाँ, और रुक्मिणी को हम पूजा करने के बहाने से जब मंदिर भेज रहे। अब ब्राह्मण देव जो रहे श्याम सुंदर को मंदिर पे खड़ो करवे के बाद में जैसे ही वहां से आगे बढ़े रुक्मिणी के पास में पहुंचे तो रुक्मिणी भाग के सामने आई।
जवाब दो ब्राह्मण देव, क्या श्याम सुंदर आए?
ब्राह्मण बोले चुपरा आए, चोले हमने देखो ना तोले जब मालूम पति जन कितो सुंदर हो, हमारी समझ में एक बात ना आए, रुक्मिणी तूने देख खा लो है वैसे ही कारो करो टासदार हो का देख लो तूने।
तो रुक्मिणी कहने लगी है ब्राह्मण देव अगर तुम ये कह रहे हो तो हम तुम्हें बताएं, हम बताएं तुम्हें।
रुक्मिणी बोली कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती,
प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती,
रुक्मिणी कहने लगी ब्राह्मण देव
दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं
लगे छुप रहो वैसी बातें बना रही। हाँ, एक बात है रुक्मिणी।
क्या?
बोले श्याम सुंदर आए तो हैं लेकिन आए अकेले ही
और ज्यादा मोटे उताजो ना है, वैसे ही मरो सुधरो है
और तुम ऐसा करियो पूजा करवे के बहाने से मंदिर पे चुपचाप चली जाइयो, काऊ कानो कान बिल्कुल भनक ना पड़े, चुपचाप चली जाओ और श्याम सुंदर तुम्हें भाई मिलेंगे। और जैसे ही रुक्मिणी चलबे के लिए तैयार भाई सोई ब्राह्मण बोले रुक जाओ अबे ना।
बोलिए।
जब आप तो रुक्मिणी हमें बड़े तेजी से भूख लगी है, शुक्र भोजन दे दो ताकि बाद में तुम जाओ।
तो रुक्मिणी कहने लगी हे ब्राह्मण देव अभी हम तुम्हें भोजन नहीं दे पाएंगे।
मतलब भूख अभी लगी है, भोजन कब करेंगे?
जवाब दिया ब्राह्मण देव जरा सोचो, अगर हमने तुम्हें भोजन दिया ना तो कहीं श्याम सुंदर वहां से चले ना जाए, इसलिए तुम ऐसा करना, तुम उसी द्वारिका में आना, तो हम अपने हाथों से तुम्हें भोजन बना के खिलाएंगे।
ब्राह्मण बोले कोई बात ना जाओ, लेकिन कानो कान भनक ना पड़े। ब्राह्मण तो वहां से चले गए और रुक्मिणी चलने के लिए तैयार, वही सोई दिमाग में झटका लगो, दिमाग में झटका लगो। रुक्मिणी ने सोची चलो हम काऊ ना बताए, लेकिन हम अपनी माँ को तो बता ही दे। रुक्मिणी जो रहे अपने मैया के पास में पहुंची। रुक्मिणी की माँ कहने लगी कहाँ जा रही हूं?
बोली मैया हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं।
अच्छा फिर यहां किस लिए आई? बैठेगी रुक्मिणी, बैठो। रुक्मिणी बैठी,
जवाब दो मैया।
हाँ
मेरी शादी कब हो जाएगी?
कल।
और मैं ससुराल कब चली जाऊंगी?
परसों।
तो रुक्मिणी बोली मैया ऐसो मन कहते कि आज ही खूब चिपट के रोए ले।
रुक्मिणी की माँ कहने लगी पागल है, अगर अब ऐसा रोई तो तेरी जी आंखें सूज जाएं, अरे जब जाए तब रो लिए। लेकिन भक्तों खैर ये गलत है, पहले ये रोना नहीं चलता था, पहले ये रोना नहीं चलता था, और रोना तो तब से चला है जब अपना देश भारत गुलाम था तब से। लेकिन अब तो हम सब लोग आजाद हैं, आजाद तो हो गए, लेकिन ये रोने की प्रथा नहीं छूट पाई, पहले ये रोना नहीं चलता था और अब ये रोना चलता है। और कैसी प्रथा है रोईवे की, कहा रोईवो है, देखी हो दशा। कुछ देर पहले तो खूब हंसे खेले और जो कंधा से कंधा मिले फिर ऐसी इलायती सी टपकते समझ में ना आते। हाँ और ज्यादा दूर ना है, गाड़ी में थोड़ी दूर बैठ के निकल पाई गांव से, सोई में बोले उठी निकल रोकी रोके ले उसी वजह चले जाता। बोले काय जवाब दो, जब हम घर से चले थे तो हमारी अम्मा ने जब कही थी जा मैं रह रही दारे बहाने के बाद नहीं कहना है, मतलब का रही वो। अगर कोई समझदार लड़की है और वो न रोए ससुराल को चली जाए, और दूसरी बार जब लौट के आए तो दूसरी तो भाई चैन ही ना लेन देती, जवाब देती देखो गई तब कूद के बैठ गई एक आंसू ना डार। वैसे रोना नहीं चाहिए क्योंकि आज हम सब लोग आजाद हैं, और जरा सोचो जिस घर में हम पहली बार जा रहे हैं और रो के जा रहे हैं तो सारी जिंदगी तो वैसे भी रोना पड़ेगा, तो रोना नहीं चाहिए, बड़े हंसी खुशी से ससुराल को जाना चाहिए। और रुक्मिणी रोई, रुक्मिणी क्यों रोई? रुक्मिणी इसलिए रोई कि वो किसी को बता के नहीं जा रही थी, अपने माता पिता से छिप करके, भाई भाभी से छिप करके, समान से छिप करके वो किसी को बता के नहीं जा रही थी। और रुक्मिणी एकदम से मैया के गले लग गई और बोली मैया
कि चल भैये ससुराल और दुल्हनी बन के चली ससुराल, दुल्हनी बन के चली ससुराल, रुक्मिणी एकदम से रोई उठी और बोली मैया भूल मत जइयो
अपने माँ के गर्दन लग के जब रोई है गले में लग के, तो रुक्मिणी की माँ कहने लगी, ऐसा करो दो चार लड़कियां इसके साथ में चली जाओ, ये मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, बाजा के रोए ना। और जैसे ही दो चार लड़कियां ठाड़ी भाई, सोई रुक्मिणी को पेट जड़ी हो, सोचन लगी आज कहूं हुआ उदम न मचाए थे। हाँ, अब आगे आगे रुक्मिणी जा रही, पीछे पीछे लड़कियां जा रही, लेकिन वे बोली काऊ सना है, काऊ सना है। बोली एक, बोली बहन क्या बात है, पहले तो जाए इतनी बातें करो करती थी जो बिल्कुल बंद ही ना होती, और आज तो जब बुलवाए सब ना बोलते, क्या बात है। दूसरी बोली चुपरा तो ना मालूम शादी ना हो रही ताकि घमंड में चटक ही मरी जाती, और ना बोल रही मत बोले कोई मतलब ना। अब धीरे 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 आगे बढ़े, मंदिर के नजदीक जब पहुंचे तो श्याम सुंदर ने जैसे ही देखी सोई सोचन लगे, बारे पंडित जी हमने एक बुलाई उनने लाइन लगाई, अब हमारे जय समझ में आया रही कौन सी रुक्मिणी है कौन सी ना है। और इधर रुक्मिणी ने जब सोची कहूं हमारे धोखे तो सरी को ना धरे लाए चले जाए, तो जोन से हाथ में कंगन बांधे रहे, बस बहे हाथ उठाए कि जवाब दो बहने, जे फौजे किन की है दंत बकरी, और जे किन की है सस्पाल की। सोई श्याम सुंदर समझ गए हमें जब मालूम पत्ते के जई रुक्मिणी है। इशारो देके भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी को अपने नजदीक बुलाओ, और जैसी रुक्मिणी को बुलाओ है रुक्मिणी तो कछ न बोली, और रुक्मिणी की सहेली बोली जवाब दिया, कौन है तुम, दिखाई नहीं देता ये राजा की लड़की है, किससे बातें कर रहे हो। श्याम सुंदर ना बोले पाए ता से पहली रुक्मिणी, रुक्मिणी बोल उठी जवाब दो, नकटी बात है हमसे होती तू बीच में दादी बनेगी, अब की बार बोली ना तई हमें ना कहीं काट डाले। अब रुक्मिणी धीरे धीरे कन्हैया के सामने पहुंची, बोले तुम कहां रहते हो। श्याम सुंदर बोले हर जगह, सो और जो लड़कियां ठाड़ी रहे सो ताली बजाए के हंस दई, जवाब दो बिल्कुल ही पागल मालूम पत्तो हैं। अब उन्हें का मालूम भगवान हर जगह रहते हैं। रुक्मिणी बोली तुम्हारी कमर में क्या है,
बांसी,
क्या बजाना जानते हो।
हाँ हाँ,
तो ऐसा ना करा निक हमें बजाए की दिखाई दे।
बोले बिल्कुल नहीं बजाएंगे।
क्यों नहीं बजाओगे,
जानता थे जो आज बजाई बसुरिया तो चारों दुश्मन लगे बे गिन गिन कई बसुरिया तोड़ती। बोले आज नहीं बजाएंगे।
तो रुक्मिणी बोली ऐसा ना करा तुम बजाओ ना तो निक हमें दिखाई दे।
बोले दिखाएंगे भी नहीं।
मतलब
ये है कि जिस किसी को हम ये बंसी देखने के लिए देते हैं फिर वो देने का मन ही नहीं करता, इसलिए हम नहीं दिखाएंगे।
तो रुक्मिणी बोली सो जा में कहा हीरा मोती जड़े ने दिखाई दे फिर अपनी ले लियो हमें का मतलब।
और कन्हैया ने जैसे इतने शब्द सुने बंसी नीचे लटकाई, रुक्मिणी ने ऊपर को हाथ बढ़ाओ, भगवान श्याम ने बंसी तो गोद में डाली और रुक्मिणी को हाथ पकड़ो रथ में बैठाओ, और धीरे ही धीरे रथ आगे को बढ़ाओ। अब जैसे ही रथ चंत भाव देखो सहेलियन ने सुबह एकदम से भागी, गिरती जाए भजती जाए रुक्मिणी के मां के सामने पछाड़ खाए की गिर पड़ी। रुक्मिणी की मां कहने लगी रुक्मिणी कहां है,
जवाब दो मैया, मैया पूजा करने के लिए जब गई थी और मंदिर पे पता ना को कारो करूटा से चलो माने रुक्मिणी को हाथ पकड़ो रथ में बैठा रो अब लाइन चलोगा, अब दुख जब आते को ना है, दुख जब आते को ना है, दुख तो जब आते को है कि उनकी पता ना कब की सलो है उनने तो हाथ गोड़ना है फटफटाए।
तो रुक्मिणी की मां समझ गई, कहने लगी तुम किसी से मत कहना
क्योंकि श्याम सुंदर के अलावा और कोई नहीं हो सकता है, किसी से मत कहना।
रोको मां गया किसी से मत कहना, अरे मेरी बहन को ले जाना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। भागा रुकुम वहां से, और उधर श्याम सुंदर ने थोड़ी दूरी रथ चलाओ और सोई रथ खड़ो कर लो।
तो रुक्मिणी बोली थोड़ा जल्दी चलो ना मेरा भाई आ जाएगा।
कन्हैया बोले बाहर से घोड़ा भाग के आ जाओ उसे फिर भजाए के ले जाए हैं, आ जान दे तुम्हारे भाई है देखे क्या करे। और तब तक तो रुकुम ने घेर लिया, आवाज लगाई आड़ो नहीं है। रुकुम बोला ठाड़ो नहीं है कृष्ण मुरारी रे ठाड़ो नहीं है, ठाड़ो नहीं है कृष्ण मुरारी रे ठाड़ो नहीं है। अब और मैं चुराने का धंधा शुरू कर लिया। अब मेरी बहन को ले जाना, कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है। रुकम बोला, अगर तू जीत गया तो हमारी बहन को ले जाना। और श्याम सुंदर ने जैसे ही इतने शब्द सुने हैं तो रथ से एकदम से उठ करके चले। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे भैया के सामने न जा, मेरे भैया के सामने न जा। श्याम सुंदर कहने लगे, तुम्हारे भाई के सामने क्यों ना जाए? अरे तुम्हारा भाई हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है और हम तुम्हारे भाई के सामने ना जाए, क्यों ना जाए?
रुक्मिणी बोली, तुम्हें नहीं मालूम है, नहीं मालूम है तुम्हें, मेरो भैया, मेरो भैया जबर तुम हल के निकार की जाइयो,
समझा रही है लेकिन श्याम सुंदर नहीं माने। आगे को बढ़ के जैसे ही गए हैं उधर से रुकुम भी ललकार मारता हुआ सामने पहुंच गया। अब श्याम सुंदर और रुकुम आमने सामने हैं, कन्हैया में और रुकुम में मल्ल युद्ध होने लगा। श्याम सुंदर में और रुकुम में जब मल्ल युद्ध हो रहा था लेकिन रुकम की कोई पेश नहीं गई। बहुत जोर लगाता है, जब कोई पेश नहीं गई तो श्याम सुंदर ने उछाल करके जमीन पर पटक दिया, तलवार निकाली और जैसे ही तलवार मारना चाहे रुक्मिणी भाग के सामने पहुंच गई, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लिया और दोनों हाथ जोड़ के एक बात कही, महाराज आप मेरे भाई को ना मारो, क्योंकि आपने अगर मेरे भैया को मार दिया तो संघ की सहेली हमें चैन नहीं लेने देंगी, इसलिए मेरे भाई को छोड़ दो। श्याम सुंदर ने रुकम को छोड़ दिया, जान से नहीं मारा लेकिन पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया और रुक्मिणी बैठ गई रथ में। अब बेऊ तो भैया का पीठ करके बैठ गई। हाँ, उधर बलराम ने देखा कि श्याम सुंदर बहुत देर के गए, अभी लौट के नहीं आए, बड़ा समय हो गया, चलो हमें देखना चाहिए कहां गए। अब बलराम रथ पर सवार होके तुरंत ही चले, भगवान कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। अब बलराम कहने लगे, श्याम सुंदर
जी भैया,
ये किसकी लड़की को लेके आए हो?
कन्हैया बोले, भैया जा मैं मेरो दोस्त हो रू।
बलराम कहने लगे, लड़की को तुम लेके आए, दोस्त किसी और का है? तुम्हारे साथ में ये लड़की है?
जवाब दो भैया, दोस्त मेरो ना, इन्होंने हमारे पास में पत्र भेजा था तब हम इनके पास में चले आए।
बलराम ने जवाब दिया, तुम्हारा नाम क्या है? तुम हमारे भोले भाले श्याम को बदनाम करना चाहती हो, क्या नाम है तुम्हारा?
कहने लगी, भैया मेरा नाम रुक्मिणी है।
तुमने मेरे श्याम को क्यों बुलवाया?
बोली, भैया मेरा भाई था ना, वो अपने साले के लिए मेरी शादी कर रहा था, इसलिए मैंने श्याम सुंदर को बुलवाया।
तो बलराम बोले, रुक्मिणी तो चिंता मत करो, अगर तुम्हारा भाई अपने साले के लिए शादी कर रहा था तो हम तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़ेंगे। और रथ के पीछे जैसे ही नजर गई, जवाब दो कन्हैया जे कौन है?
श्याम सुंदर बोले, बस भैया जे ही तो साले साहब हैं। अरे वे तो रुक्मिणी बीच में आएगी ना, साले में तो मसालों ही भर के छोड़ दे।
तो बलराम बोले, ऐसा करो इन्हें छोड़ो, जाने दो इसे। रुकम को छोड़ दिया और रुकम वहां से भागा, सस्पाल के पास में पहुंच गया, जवाब दिया, दूल्हा बने बैठे रहो। अरे बैठे रहो, दूल्हा बन के शादी किसके साथ में करोगे, क्योंकि रुक्मिणी को तो कृष्ण ले गया। और जैसे ही सस्पाल ने इतने शब्द सुने तो एकदम से भागा। बलराम श्याम के पास में पहुंचा सेना लेके, तो बलराम कहने लगे, कन्हैया तुम रुक्मिणी को छोड़ करके कहीं मत जाना, ये सस्पाल और रुकम की फौज हमारे लिए ज्यादा नहीं है। हल मुसल को हाथ में उठा लिया, ऐसा ही नहीं तो दाऊ ने हल मुसल लेकर अब मारा मार मचाई है, जान बचाई कि भाग दे तब लड़ से सभी सिपाही है। बलराम ने हल मुसल को हाथ में उठा लिया, ऐसा ही नहीं दाऊ ने हल मुसल ले अब मारा मार मचाई है, और जान बचाई कि भाग दे तब लड़ से सभी सिपाही है। हल मुसल को हाथ में ले लिया सस्पाल और रुकम की जितनी भी सेना थी, बलराम ने सबको मार दिया। अब रुकम तो वहां से जान बचा के भाग गया, सस्पाल सोचने लगा अब क्या करें। कहे सस्पाल मन ही मन में जा कैसी मुसीबत आई है, जाने हमारी बच जावे हम नहीं करे सगाई है। सस्पाल सोचने लगा अब हम क्या करें, यहां से भागे? रुको मार सस्पाल तो वहां से भाग जाते हैं और इधर बताया है वैसे हमने एक जगह ये लिखा देखा है कि महाराज भीष्मक ने जब ये सुना है कि श्याम और बलराम आए हैं तो बड़े आदर सम्मान के साथ में अपने ही घर में इन्हें बुलाया है और घर में मंडप जो गढ़ा हुआ था ब्राह्मणों को बुलवाया है और रुक्मिणी का विवाह जब श्याम सुंदर के साथ में किया है और उसमें तो यह भी लिखा देखा कि द्वारिका से बारात भी बुलवाई है और बड़े प्रेम से श्याम सुंदर का विवाह हुआ है। कहां? कुंदनपुर में। और जब विवाह हुआ रुक्मिणी के साथ में तो जो कुंदनपुर की नारियां रहे, कुंदनपुर की जो नारियां रहे वे गाली गाती वहीं बोली श्याम। क्या बोली?
अरे मोर मुकुट सर बांधी लला तुम दुई
पहली दूसरी बोली, बोली निकल के जा, अब तू ही कहते रहे हमें ना कर दे, बोले हमें कहते
जब आवे तो वो गए ले तो का कहे
सुबह नाचती भई हाथ नचाती भई आगे को गई और श्याम के नजदीक पहुंची एक बात कही बोली
विवाह श्याम सुंदर के साथ में किस तरीके से हुआ था।